آپ ہیں ایس بی ایس ہندی کے ساتھ اور خبروں کے لیے جائیں sbs.com.au/hindi پر۔
ایس بی ایس ہندی پر گورو ویشنو کے ساتھ سنیے شام 5 بجے تک کے مکھ سماچار۔ چینی ادھیکاری دوارا پوسٹ کی گئی فرضی تصویر کے معاملے میں نیوزی لینڈ آیا آسٹریلیا کے ساتھ۔ بھارت میں آندولنرت کسانوں کو سرکار نے دیا بنا شرط بات چیت کا نیوتا، اور آسٹریلیا کے خلاف تیسرے ایک دیوسیہ میچ میں بھارتی ٹیم میں ہو سکتے ہیں کئی پریورتن۔ اور اب سماچار وستار سے۔ ایک آپتی جنک تصویر پر چین اور آسٹریلیا کے بیچ بڑھتی تناتنی کو دیکھتے ہوئے نیوزی لینڈ نے چنتا ظاہر کی ہے۔ دراصل یہ معاملہ چین کے ودیش منترالے کے پروکتا جھاؤ لیجین دوارا ایک فرضی تصویر پوسٹ کرنے کے بعد بڑھا ہے، جس میں کہ ایک آسٹریلیائی سینک کو ایک افغان بچے کے گلے پر چاقو لگائے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ چین نے پردھان منتری اسکاٹ موریسن دوارا معافی کی مانگ کو ٹھکرا دیا ہے۔ اس کے بعد نیوزی لینڈ کی پردھان منتری جیسنڈا آرڈن نے بھی اس ٹویٹ کی بھرتسنا کی ہے۔
Look, we have raised concerns. This is an image that wasn't factual, it wasn't correct. And so in keeping with our principled position where images like that are used, we will raise those concerns and we'll do it directly. That for us is a principled position that New Zealand takes regardless of where that exchange is happening between.
مہینوں بعد دیش کے کچھ راجیوں کی سیمائیں کھلنے کے بعد کئی بھاوناتمک پنرملن دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ کوئنز لینڈ ایک بار پھر وکٹوریا اور گریٹر سڈنی سے آنے والے یاتریوں کا سواگت کر رہا ہے، اور ساؤتھ آسٹریلیا نے بھی وکٹوریا کے لوگوں پر لگائے گئے یاترا پرتبندھوں کو ختم کر دیا ہے۔ ہزاروں لوگوں نے اس دوران راجیوں کی سیمائیں پار کی ہیں اور ایئر لائنز بھی اپنی کشمتا کے مطابق بھر چکی ہیں۔ آپ کو بتا دیں کہ کیول برسبن پہنچنے کے لیے ہی 6,000 ٹکٹ بک ہوئی ہیں۔ برسبن ایئرپورٹ پر ایک دمپتی ٹیم پیئرسن اور تانیا ہینس فورڈ 5 مہینے الگ رہنے کے بعد ملے۔
Just shaking. It's speechless. I'm just so happy to be here.
And what about you? Oh, it's been a long 5 months. Definitely a long 5 months.
ویسٹرن آسٹریلیا نے گھوشنا کی ہے کہ وہ 8 دسمبر کے بعد سے وکٹوریا اور نیو ساؤتھ ویلز کے یاتریوں کے لیے اپنی سیما کھولیں گے۔ وہیں گروار سے ساؤتھ آسٹریلیا سے تسمانیہ پہنچنے والے لوگوں کو ایکانتواس میں رہنے کی آوشیکتا نہیں ہوگی۔ ایسے میں جبکہ ساؤتھ آسٹریلیا نے وکٹوریا کے ساتھ اپنی سیمائیں ایک بار پھر سے کھولنے کی بات کہی ہے، راجیہ میں ایک اور دن کورونا سنکرمن کا کوئی بھی نیا معاملہ سامنے نہیں آیا ہے۔ مکھیہ چکتسا ادھیکاری نکولا اسپیریئر کا کہنا ہے کہ یہ ایک اتسو کا دن ہے، جبکہ ہاسپٹیلٹی، انتم سنسکار، سنیما، تھیٹر اور کھیل سویدھاؤں پر سے پرتبندھوں کو کم کیا گیا ہے۔ ایسے جگہوں میں جانے پر اب اپبھوکتاؤں کے کیو آر کوڈ سسٹم کا پریوگ کرنا ہوگا، جس میں کہ اسمارٹ فون کا استعمال کرنے کی ضرورت ہوگی۔ لیکن پروفیسر اسپیریئر نے چیتاونی دی ہے کہ ایڈیلیڈ کے اتر میں پیرافیلڈ کلسٹر سے جڑے کچھ ایسے معاملے ابھی بھی ہو سکتے ہیں جن کی پہچان نہیں ہو پائی ہے۔
Unfortunately, we did have that initial issue around the Woodville Pizza Bar, and it's still very much a concern for us just in terms of the public health and the fact that we may not have been able to capture everybody in terms of finding out who had been to the Woodville Pizza Bar.
ایک آسٹریلیا سینک کو اپنے ساتھیوں کو بچانے کے لیے اپنا بلیدان دینے پر 70 سے زیادہ ورشوں کے بعد دیش کے سروچ سینیہ سمان سے نوازا گیا ہے۔ دوسرے وشو یدھ کے ہیرو ٹیڈی شین کو کینبرا میں وکٹوریا کراس سے نوازا گیا۔ گورنر جنرل ڈیوڈ ہالے نے یہ میڈل شری سین کے پریوار کو ان کے اس ساہسک کارنامے کی 78ویں سالگرہ پر پردان کیا۔
We continue to see and hope to see part of Teddy in the world around us, selflessness, loyalty and honour. On behalf of all Australians, I acknowledge his remarkable service, gallantry and sacrifice. May we all remember it, honour it and learn from it.
ریزرو بینک نے گھوشنا کی ہے کہ وہ اپنی نقدی در کو 0.1% کے ایتیہاسک استھر پر بنائے رکھے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ سال کے انت تک بیاز دریں کم ہی رہیں گی۔ ایک بیان میں ریزرو بینک کے گورنر فلپ لوو نے کہا کہ آسٹریلیا کی ارتھ ویوستھا امید سے کہیں ادھک تیزی سے سدھر رہی ہے۔ اور اب خبریں بھارت سے۔ केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों के नेताओं को कोविड-19 महामारी एवं सर्दी का हवाला देते हुए 3 दिसंबर की जगह मंगलवार यानी आज बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। गौरतलब है कि लाखों किसान दिल्ली की सीमा पर पिछले 5 दिनों से धरने पर हैं। केंद्रीय कृषि कानून के खिलाफ उनका यह धरना आज 6वें दिन प्रवेश कर गया है। इन कानूनों के बारे में किसानों को आशंका है कि इससे न्यूनतम समर्थन मूल्य समाप्त हो जाएगा। बैठक के न्योते के बारे में कृषि मंत्री ने समाचार एजेंसी ANI से कहा,
1 दिसंबर को दोपहर 3 बजे विज्ञान भवन में उन सभी किसान यूनियन के नेताओं को आमंत्रित किया गया है जो पहले दौर की वार्ता में उपस्थित थे। मैं आपके माध्यम से सभी किसान यूनियन के महानुभावों को और किसान बंधुओं को यह आग्रह करना चाहता हूँ कि आंदोलन का रास्ता त्याग कर वो चर्चा करें और कल विज्ञान भवन में पधारें, और उनको निमंत्रण भेज दिया गया है और वो चर्चा से जो रास्ते निकल सकते हैं वो सरकार उस पर विचार करने के लिए पूरी तरह पहले भी तैयार थी और आज भी तैयार है।
उधर इस पूरे मसले पर किसानों की ओर से भी प्रतिक्रिया आई है, हालांकि किसान अभी भी संतुष्ट नज़र नहीं आ रहे हैं। बातचीत के लिए बुलाए गए किसानों का आरोप है कि सरकार किसान संगठनों के बीच फूट डालने की कोशिश कर रही है। उन्होंने मांग की है कि केवल 32 नहीं बल्कि देश भर के प्रदर्शन कर रहे करीब 500 संगठनों को बातचीत के लिए बुलाया जाना चाहिए। पंजाब किसान संघर्ष समिति के सचिव सुखविंदर S. सबरान ने कहा कि प्रधानमंत्री को ये बैठक लेनी चाहिए।
देश की सभी जथेबंदियां 500 से प्लस इस मैदान में लड़ रही है, जिनको मालूम पड़ गया है ये ऑर्डिनेंस देश की अर्थव्यवस्था को भी तबाह कर देंगे और लोगों की जिंदगी भी बुरी तरह तबाह करेंगे, खपतकार पूरी तरह प्रभावित होगा। हम कहना चाहते हैं मोदी जी खुद मीटिंग लें और इसके लिए देश की सभी जथेबंदियों को बुलावा दिया जाए और बड़े मन से इन ऑर्डिनेंस को रद्द करने की कवायद शुरू करके ये ऑर्डिनेंस रद्द किए जाए। जो लोगों को चीज नहीं चाहिए वो लोगों पे थोपनी नहीं चाहिए। हम कहना चाहते हैं कि हम जितनी देर सभी जथेबंदियों को न्योता नहीं दिया जाता, फूट डालने की जो कोशिशें वो बंद नहीं की जाती, उतनी देर हम मीटिंग का कोई डिसीजन नहीं लेंगे।
राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी RLP के संयोजक और सांसद हनुमान बेनीवाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। उन्होंने मोदी सरकार से 3 कृषि कानून वापस लेने की मांग की है। उन्होंने कानून वापस न लेने पर NDA छोड़ने की धमकी दी है। पार्टी ने कहा कि अगर इस मामले में त्वरित कार्रवाई नहीं होती है तो वो NDA का सहयोगी दल बने रहने पर पुनर्विचार करेंगे। बृहन्मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन यानी BMC ने एक ऐसे प्रोजेक्ट को शुरू करने की योजना बनाई है जो कि कोविड वायरस के लक्षणों को पकड़ने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करता है। ये एक इसराइल से लाई गई तकनीक है जिसे बायोमार्कर्स कहा जा रहा है। इसमें लोगों के आवाज़ को रिकॉर्ड किया जाता है। दावा किया जा रहा है कि आवाज़ में बदलाव से पता चलता है कि किसी शख्स को कोविड संक्रमण होने की संभावना है या नहीं।
नॉर्मल वॉइस आपका जो है उसमें आपको काउंट देनी है 20 आंकड़ों की। ये आप हिंदी में, मराठी में, गुजराती में या इंग्लिश में काउंट कर सकते हैं। इसके बाद हमने उनकी वॉइस कॉफ का सैंपल भी लिया, खांसना 5-7 टाइम खांसने का उनका जो साउंड है वो भी हमने कैप्चर किया। और इमीडिएटली जैसे ही सबमिट का बटन दबाते हो तुम आईपैड पे कि मोबाइल पे, ये तुरंत इंफॉर्मेशन इजराइल के कंप्यूटर में जाती है।
भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले बढ़कर 94.62 लाख से अधिक हो गए हैं, जिनमें से 88,89,585 लोग संक्रमण मुक्त भी हो चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से मंगलवार सुबह 8 बजे जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक एक दिन में 31,118 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमण के मामले बढ़कर 94,62,809 हो गए हैं। वहीं 482 और लोगों की मौत के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 1,47,621 हो गई है। वहीं कोविड-19 से मृत्यु दर 1.45% है। और अब डॉलर का हाल। आज यानी मंगलवार को ये खबर लिखे जाने तक एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर की भारतीय रुपये में कीमत $54.48 और अमेरिकी डॉलर की तुलना में एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर की कीमत 73 सेंट्स थी। और अब खबरें खेल के मैदान से। भारतीय टीम को एक दिवसीय मैचों में ऑस्ट्रेलिया के हाथों लगातार दो हार का सामना करना पड़ा है। नतीजा ये हुआ कि टीम इंडिया एक दिवसीय सीरीज हार चुकी है। दोनों की मैचों में गेंदबाज पूरी तरह से असफल रहे, जिसके बाद तीसरे एक दिवसीय में टीम में बदलाव होना निश्चित माना जा रहा है। भारतीय टीम के लिए दोनों वनडे में जसप्रीत बुमराह काफ़ी महंगे साबित हुए, तो वहीं नवदीप सैनी भी वो सफलता अर्जित नहीं कर सके जो उन्होंने आईपीएल में की थी। भारतीय टीम के पास इस समय बेंच में शार्दुल ठाकुर, टी नटराजन और कुलदीप यादव जैसे खिलाड़ी बैठे हुए हैं। माना जा रहा है कि इन्हें तीसरे वनडे में शामिल किया जा सकता है। इसके साथ साथ मयंक अग्रवाल के बदले मनीष पांडे को भी प्लेइंग 11 में शामिल किया जा सकता है। तीसरे वनडे में टॉस भी काफ़ी अहम होने वाला है। पिछले दोनों वनडे में ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी की और बड़ा स्कोर खड़ा किया था। भारतीय टीम दोनों वनडे में रन चेज नहीं कर पाई। ऐसे में कप्तान कोहली चाहेंगे कि टॉस जीतकर वो पहले बल्लेबाजी करें। फीफा विश्व कप इतिहास में अपने एक गोल से सबसे बड़ा उलटफेर करने वाले सेनेगल के लंबे कदकाठी के मिडफील्डर पापा बोबा डियोप का निधन हो गया है। वो 42 साल के थे। फुटबॉल के संचालन संस्था फीफा ने रविवार को कहा कि फीफा सेनेगल के महान पापा बोबा डियोप के निधन की खबर सुनकर काफ़ी दुख है। जापान और दक्षिण कोरिया में हुए 2002 विश्व कप के शुरुआती मैच में डियोप के गोल की मदद से सेनेगल ने गत चैंपियन फ्रांस को 1-0 की शिकस्त देकर उलटफेर किया था। इस विश्व कप में सेनेगल ने पदार्पण किया था और इस जीत के बदौलत टीम क्वार्टर फाइनल तक पहुंची थी, जिससे उसने किसी अफ्रीकी टीम के टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की बराबरी की थी। फीफा ने ट्विटर पर श्रद्धांजलि देते हुए लिखा कि एक बार विश्व कप का नायक हमेशा विश्व कप का नायक ही रहता है। और अब डालते हैं नजर कल यानी बुधवार को देश के प्रमुख शहरों के मौसम के हाल पर। शुरुआत पर्थ से। पर्थ में कल धूप रहने के आसार हैं। अधिकतम तापमान 26 डिग्री, न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस। एडिलेड में बादल छंटते नजर आ रहे हैं। अधिकतम तापमान 21 डिग्री, न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस। मेलबर्न में आंशिक तौर पर बादल छाए रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 19 डिग्री, न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस। देश की राजधानी कैनबरा में धूप रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 25 डिग्री, न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस। सिडनी में आंशिक तौर पर बादल छाए रह सकते हैं। अधिकतम तापमान 24 डिग्री, न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस। ब्रिस्बेन में ज़्यादातर धूप रहने के आसार हैं। अधिकतम तापमान 34 डिग्री, न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। डार्विन में छिटपुट बारिश के आसार हैं। अधिकतम तापमान 34 डिग्री, न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। भारत की राजधानी नई दिल्ली में धूप रहने की संभावना है। दिल्ली का अधिकतम तापमान 26 डिग्री, न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। समाचारों में आज इतना ही।
ऐसी ही और कहानियां सुनना चाहते हैं? Apple Podcast, Google Podcast, Spotify या फिर जहां आप podcast सुनते हैं वहां हम हैं।